हम सावन ना है, एक यही तमन्ना है। ओ बाबा तुम सावन ना है, एक यही तमन्ना है। व्यक्त से अव्यक्त हो, व्यक्त से अव्यक्त हो, मीठे वतन में चलना है। ओ बाबा तुम सावनना है, एक यही तमन्ना है, एक यही तमन्ना है। खींचे ना कोई वस्तु वैभव, ना कोई स्थूल साधन, साधना और आराधना में सदा हो मन मगन। खींचे ना कोई वस्तु वैभव, ना कोई स्थूल साधन, साधना और आराधना में सदा हो मन मगन। याद में तेरे डूबे रहे, याद में तेरे डूबे रहे, सबकी ये चाहना है। ओ बाबा तुम सावनना है, एक यही तमन्ना है, एक यही तमन्ना है।
ओम शांति। कर्मातीत अवस्था, जैसे कहा जाता है मुक्ति और जीवन मुक्ति, उसका अनुभव करना। जीवन मुक्ति अर्थात सुखधाम और मुक्ति अर्थात शांतिधाम, और कर्मातीत अवस्था अर्थात मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों का अनुभव करना। ये भी हमको अभी ब्राह्मण जीवन में ही अनुभव करना है। ब्राह्मण जीवन जो बाबा हमें अनेक प्रकार की अवस्थाओं की अनुभूति करने के लिए पुरुषार्थ की अलग अलग विधियां बताते हैं, वो सारी अवस्थाएं अनुभूति करने का केवल अभी संगम युग है। इसलिए संगम युग को कहा जाता है अनुभूतियों का युग। सारे कल्प में अनुभूति करने का समय केवल अभी है। परमधाम में भी कोई अनुभूति नहीं है, स्वर्ग में भी कोई अनुभूति नहीं है, केवल संगम पर अनुभूति। द्वापर कलयुग में तो अनुभूति है, दुख और सुख की दोनों होती है, लेकिन संगम पर सर्वोच्च अवस्था की अनुभूतियां, जो अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति, कर्मातीत अवस्था की अनुभूति, अशरीरी अवस्था की अनुभूति, उड़ती कला का अनुभव, सर्व खजानों का अनुभव, गीत में सुना बाप समान बनने का अनुभव, तो इस सारे अनुभव करने का समय केवल अभी संगम युग ही। इसलिए संगम युग को कहा जाता है पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग। सबसे उत्तम पुरुष, उत्तम से उत्तम ये युग है, ये और उससे भी उत्तम आज का दिन, क्योंकि जो बीत गया तो बीत गया, वो हमारे हाथ में नहीं है अभी, और ना ही हमको फ्यूचर का पता है। स्वर्ग आएगा कब आएगा वो तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन वर्तमान मोमेंट हमारे हाथ में है। इसलिए अभी वर्तमान जीना है, वर्तमान जो समय हमारे पास में है उस पर अगर हम थोड़ा फोकस करें, उसको जीने की कला सीख ले, तो वर्तमान समय ही कर्मातीत अवस्था का अनुभव कर सकते हैं। अगर हम सोचेंगे आज सारा दिन पुरुषार्थ करेंगे, शाम तक अनुभूति करेंगे, पता नहीं श्वास तो 2 घंटे बाद निकल जाए तो 2 मिनट बाद निकल जाए तो शाम किसको किसने देखी। इसलिए बाबा जब भी हमको अनेक प्रकार के टाइटल देते हैं तो हमारी अंतिम अवस्था को देकर संबोधित करते हैं। जैसे आज बाप दादा विश्व के मालिक बच्चों को देख रहे हैं, ऐसे नहीं कहते कि आज जिन्होंने गुस्सा किया उनको देख रहे हैं, या आज जो बहुत दुखी थे वो बच्चे मेरे से मिलने आए हैं मैं उनका दुख दूर कर दूंगा। नहीं, जो हमारी संपूर्ण अवस्था है, अंतिम अवस्था है, परम अवस्था है, उसको देखकर बाबा हमें हमेशा संबोधित करते हैं। संडे की मुरली में एक जबरदस्त महावाक्य था, ब्राह्मण जन्म लेते ही बाप दादा ने बच्चों की बुद्धि में डैश भर दी, क्या श्रीमत भर दी। तो जन्म लेते ही बाबा ने हमारी बुद्धि में भर दी है, तो पहले वो स्वीकार करना है कि हाँ भर दी है, हमारे अंदर है वो। नहीं तो हम सोचते हैं कि बाबा तो बोल दे हैं भर दी है, लेकिन अंदर तो याद तो एक भी नहीं आ रही है श्रीमत। पहले से हम अपने अंदर एक निराशावादी का माहौल तैयार कर देते हैं, अपने अंदर ग्लानी का भाव पहले से पैदा कर देते हैं, गिल्ट कॉन्शियस कि भगवान जो कह रहे वो तो मेरे में दिखता ही नहीं है। नहीं है वो, थोड़ा सा प्रयास करने की जरूरत है। छोटे छोटे प्रयास से हम ऊंच से ऊंच अवस्था का अनुभव कर सकते हैं। इसलिए बाबा हमको कदम कदम पर सावधानी देते रहते हैं, क्योंकि भूल जाते हैं हम। विस्मृति और स्मृति, सारा खेल इन 2 शब्दों के ऊपर है। जब हमें स्मृति रहती है तो हम समर्थ स्थिति का अनुभव करते हैं, और जैसे विस्मृत हो जाते हैं तो माया समर्थ स्थिति का अनुभव करती है। हम कमजोर हो जाते हैं, और माया क्या है, हमारे कमजोर संकल्पों की रचना ही माया है। माया का रूप तो कैसा है नहीं है। जो हम नेगेटिव थॉट क्रिएट करते हैं, व्यर्थ संकल्प रचते हैं, दूसरों के अवगुणों का चिंतन करते हैं, यही मायावी रूप हमारे रग रग में बस जाते हैं। क्योंकि हर संकल्प में ऊर्जा है, शक्ति है। जो भी हम संकल्प करते हैं, चाहे वो नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, उस संकल्प के वाइब्रेशन पूरी बॉडी में फैल जाते हैं। इसलिए साइंटिस्ट भी कहते हैं, डॉक्टर लोग भी कहते हैं, अधिकतर बीमारियां हमारे संकल्पों से ही उपजती हैं, संकल्पों से ही पैदा होती हैं। इसलिए संसार में कई ऐसे भी मरीज देखे गए हैं जिनका मनोबल बहुत ऊंचा था, बिना दवाई लिए कैंसर जैसी बीमारियों से मुक्त हो गए। ऐसे ब्राह्मण परिवार में भी बहुत सारे ऐसे भाई बहने हैं जिन्होंने संकल्पों से ही अपने कैंसर तक को ठीक कर लिया, और उसका अनुभव सुनते होंगे आप। नीमच के सुरेंद्र भाई, नीमच सेंटर के, कितनी कैंसर की गांठें थी अंदर, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, लेकिन 30-35 साल हो गए अभी भी ठीक है, चल रहे हैं वो। उसका प्रभाव उनके मन पर नहीं है, क्योंकि संकल्प से स्वीकार ही नहीं किया उस चीज को। इसलिए संकल्प शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। तो अभी आज के विषय पर चर्चा करेंगे, कर्मातीत अवस्था बनने के सूत्र अर्थात विधियां। तो सबसे पहली विधि तो आज बाबा ने बताई मुरली में, सबसे पहली विधि कौन सी। आज की मुरली में बहुत सारी विधियां हैं, क्या है, कौन सी विधि है, अथक बनना। किसमें, पढ़ाई में अथक बनना है। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, ज्ञान योग में ज्ञान को तीखा उठाना है, अच्छी तरह उठाना है। लेकिन जो भी हम ज्ञान का चिंतन करते हैं, जितने भी ज्ञान के पॉइंट्स हमारी बुद्धि में घूमते रहते हैं, ये सारे हमारे जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन करते हैं। पुरुषार्थ कभी निष्फल नहीं जाता है। ऐसा नहीं हमको सोचना है कि हम ज्ञान तो चिंतन कर रहे हैं लेकिन किसी को सुना नहीं पा रहे हैं, या हमारा ज्ञान किताबों कॉपियों में डायरियों में रह रहा है। ऐसा नहीं है, बहुत उसका हमारे जीवन पर असर हो रहा है उसका। बच्चे स्कूल में जाते हैं, अगर माँ बाप दोनों टीचर हैं फिर भी उसको स्कूल में भेजते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ जो उसको सीखने की कला मिलेगी वो माँ बाप नहीं सिखा पाएंगे। वहाँ एक माहौल मिलता है, इतने बच्चों से मिलेगा तो सबसे कुछ ना कुछ सीख के आएगा, चाहे वो नेगेटिव सीखे चाहे पॉजिटिव सीखे। इसलिए बाबा कहते हैं एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है, पढ़ाई में कभी थकना नहीं है, जब तक जीना तब तक पढ़ते रहना है। और कुछ दिन पहले था मुरली में, जब तक मौत नहीं आती तब तक पढ़ते रहना है, मृत्यु नहीं आती तब पढ़ते रहना है। तो पढ़ाई ज्ञान हमारे श्वासों में समा जाए, ज्ञान एक ऑक्सीजन की तरह काम करता है। किसी भी कार्य में अगर हमको सफलता अर्जित करनी है तो उसका ज्ञान होना जरूरी है, बिना ज्ञान के सफलता नहीं मिलती है। संसार में बड़े बड़े उद्योगपति हुए हैं तो प्लानिंग अनुसार ही उन्होंने अपने उद्योग में सफलता अर्जित की है, ऐसे नहीं कि सवेरे उठे और चल दिए, नहीं, प्लानिंग करनी पड़ती है। तो सबसे पहले हमें स्वयं की प्लानिंग करनी है, सबसे पहले प्लानिंग सबसे पहला मेथड है कर्मातीत अवस्था का। पढ़ाई में कभी थकना नहीं है, क्योंकि बड़ी ऊंची पढ़ाई है और इस पढ़ाई को ग्रहण करने के लिए बुद्धि कैसी चाहिए? सोने का बर्तन। अब हमको याद तो है ये सोने का बर्तन चाहिए, लेकिन सोने का बर्तन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पवित्रता चाहिए और चिंतन चाहिए उसके लिए, क्योंकि मन तो कुछ ना कुछ सोचता रहेगा, व्यर्थ नेगेटिव कुछ ना कुछ सोचेगा ही, क्योंकि वो उसकी आदत है, संस्कार है उसके। तो पढ़ाई का चिंतन करना है, अर्थात ज्ञान का चिंतन करना है। जितना जितना ज्ञान के प्रति हमारा प्रेम है, लगाव है, अटैचमेंट है, उतना उतना हम बाबा की समीप आते जाएंगे, उतना उतना हम कर्मातीत अवस्था की यात्रा की तरफ बढ़ते जाएंगे। कर्मातीत अवस्था का ज्ञान अपने आप ही हमारे में समाने लगेगा, क्योंकि वो हमारे मंजिल है और ये पहली सीढ़ी है। 12 सीढ़ियाँ चढ़नी है तो पहली सीढ़ी मंजिल, पहली सीढ़ी है उस मंजिल तक पहुँचने के लिए पढ़ाई अर्थात ज्ञान। तो इस पढ़ाई के प्रति हमारी बहुत प्रीत चाहिए, लेकिन होता है, देखा गया है अधिकतर योग के लिए हम थोड़ा ज़्यादा प्रोत्साहित रहते हैं लेकिन पढ़ाई में थोड़ा कम हो जाते हैं। सोचते हैं क्या हमको चिंतन करना, बहुत ज्ञान तो चिंतन कर लिया, क्लासों की बाढ़ आई पड़ी है, इतनी क्लासें करा दी हैं, क्या सुननी है यूट्यूब पर इतनी है। नहीं, जितनी क्लासें हो उतना कम है, क्योंकि हमारे संस्कार ही वही हैं, अगर वो नहीं करेंगे तो दूसरा क्या करेंगे। इसलिए हमको ये कभी नहीं सोचना है कि क्लासों की बाढ़ आ रही है, हर एक कोई क्लास करा रहा है, कुछ करा रहा है, वो हमारे वास्तव में संस्कार है हमारे, वो ही हमको अपने जीवन में, वो नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे। तो हमें स्वयं को चिंतन करने की आदत डालनी है, वो ज्ञान का चिंतन हमारे संस्कारों में समा जाए, उसके लिए हमको सोचना ना पड़े। जैसे छोटे मोटे काम करने के लिए जो हमारी दैनिक दिनचर्या होती है, छोटे मोटे जो काम होते हैं उसके लिए हमको सोचना पड़ता है कि अभी मुझे भोजन करने जाना है, अभी मुझे कंघी करनी है, अभी मुझे स्नान करना है, नेचर बन गई है ना, उसके लिए सोचना थोड़ा पड़ता है। तो इसी तरह से हमारे ज्ञान का चिंतन करने का संस्कार भी नेचर हो जाना चाहिए। तो एक ज्ञान के संस्कार, पढ़ाई की आदत, ये हमें कर्मातीत अवस्था की तरफ ले जाएगी। दूसरी बात, आज की मुरली में बाबा ने कहा कि अपने आप को क्या समझो? ट्रस्टी समझो। तो एक है कि ट्रस्टी बुद्धि में है कि हमको ट्रस्टी समझना चाहिए, लेकिन वास्तव में उसे हकीकत में लाने के लिए, उसे अपने जीवन में लाने के लिए, या उस श्रीमत अनुसार अपने को ट्रस्टी समझने के लिए, क्या हम उस मानसिकता के साथ चलते हैं? क्या अपना पूरा पोता मिल रहता है? क्या तन मन धन से हम पूरे ट्रस्टी हैं? अगर ट्रस्टी नहीं है तो हमारी पूरे दिन उसके साथ ही बुद्धि लटकती रहेगी। तो ट्रस्टी समझना ये है कि जो भी हमारे पास घर में है, जो भी भौतिक वस्तुएं हैं, तन है, मन है, धन है, वो सभी क्या समझना है उसका? वो दिया हुआ भगवान की अमानत है। संडे की मुरली में था, अमानत में ख्यानत नहीं करना है। ये तन मन धन सबका उसका दिया हुआ है, ये तो प्रसाद के रूप में है। ये तन भी भक्ति में कहा ना, तुझको अर्पण है, तन मन धन सब तेरा, लेकिन अब प्रैक्टिकल में करने की बारी अब आई है। तो अभी प्रैक्टिकल में अगर हम अपने मन बुद्धि में पक्का कर ले कि सचमुच ये तन भगवान का दिया हुआ है, धन को तो पहले बाद में छोड़ दो, लेकिन पहले इस तन के बारे में सोचें कि ये तन हमको भगवान ने दिया है, तो इस तन से हमको कौन कौन से कर्म करने चाहिए, आज बाबा ने बोला तुम अपने से प्रतिज्ञा करते हो, कौन सी? किसी को दुख नहीं देंगे। तो इस तन द्वारा हम किसी को दुख दे सकते हैं, क्योंकि भगवान का दिया हुआ तन है। अब ये तन पहले जैसा नहीं है, ये शुद्ध तन नहीं है, ये ब्राह्मण तन है, और ये तन देवताओं से भी उत्तम है ये। हाँ, वो दूसरी बात है कि कभी कभी बाबा कहते ये तो सड़ी हुई जूती है, ताकि शरीर में उतनी अटैचमेंट भी ना रहे। तो ये तन भगवान द्वारा दिया हुआ, क्योंकि इसी तन से हमको ऊंच पद पाना है, इसी तन से हमको भगवान के यज्ञ में सहयोगी बनना है, इसी तन से हमको विश्व परिवर्तन करने के कार्य में अपनी उंगली देनी है, इसी तन से हमको ऊंची ऊंची अवस्थाओं का अनुभव करना है, इसी तन से हमको सबको सुख देना है, सबको बाबा का परिचय देना है। ये जो आंखें हैं, ये जो मुख है, ये जो कर्मेंद्रियां हैं, ये भगवान की दी हुई अमानत है। तो अगर हम समझें कि ये भगवान की आंखें हैं, तो हमारी दृष्टि कैसी हो जाएगी? रूहानी दृष्टि हो जाएगी। तो फिर किसी को क्रोध की दृष्टि से देखेंगे? तो स्मृति रहेगी कि भगवान की दी हुई अमानत है, मैं तो ट्रस्टी हूं उसको संभालने के लिए हूं। मंदिर में जाते थे भक्ति मार्ग में, तो हम कितना मनोयोग से, पूर्ण निष्ठा से मंदिर में सेवा करते थे, झाड़ू पोछा करते थे, कितना वहां हमारी श्रद्धा भावना थी। उसी तरह बाबा कहते तन भी क्या मिला हो तुमको, एक मंदिर मिला हुआ है, तो सारे दिन में इसकी स्वच्छता हम कितनी करते हैं। एक है बाहरी स्वच्छता, दूसरा है आंतरिक स्वच्छता है। ये जो मन है, जो बुद्धि है, जो संस्कार हैं, इनको हमने कहाँ तक स्वच्छ बनाया है? क्या हमारे मन में वो ही संकल्प उत्पन्न होते हैं जो हम भगवान को अर्पित कर सकें? ऐसे आज बाबा ने कहा भोग लगाना है, तमोगुणी भोग नहीं लगा सकते। तो अंदर आत्मा रूपी मूर्ति बैठी है, भगवान ने उसको स्थापित किया है, और उस मूर्ति के ऊपर हम कौन से संकल्पों का भोग लगा रहे हैं? जो बाबा इतने उतने ऊंचे हमको टाइटल देते हैं, इतने इतने ऊंचे सुमान की सीट पर सेट करते हैं, उसको छोड़कर अगर हम दूसरे संकल्पों में चले जाते हैं, तो हम कौन सा इस मूर्ति को कौन से संकल्पों का भोग लगा रहे हैं? तो शुद्ध संकल्पों का, शक्तिशाली संकल्पों का, समर्थ संकल्पों का, एकदम पावरफुल संकल्पों का, आत्मा को, जैसे आत्मा उससे परिपूर्ण हो जाए, और वो संकल्पों के परिणाम स्वरूप हमारा ये जो बॉडी है, ये जो मंदिर है, ये भी उतना स्वच्छता का अनुभव करेगा। हल्के रहेंगे, फुलके रहेंगे। बोझ क्यों होता है हमको? क्योंकि पुरानी चीजों को हमने पकड़ के रखा हुआ है, और पुरानी चीजें कैसी हैं? सड़ी हुई है, मक्खी मच्छर है उनमें। तो सड़ी हुई चीजों में क्या पैदा होता है? मक्खी मच्छर पैदा होगा, और वो किसको काटेगा? जहां मंदिर में है वही उसी को काटेगा। आज बाबा ने बताया ना, तुम पहले डैश बनकर सबको काटते थे, आज की मुरली में कांटे बनकर, तो वो कांटों से फूल बना दिया उसने हम सबको, तो कितना उपकार है उसका। आशीर्वाद कृपा, बाबा आशीर्वाद कृपा नहीं करते, चिरंजीवी बाबा का वरदान नहीं देते हैं। कौन सा वरदान देते हैं? ज्ञान योग में देखे जाना, क्योंकि यहाँ सारी समझ की बात है, यहाँ अंधश्रद्धा की बात नहीं है, यहाँ कोई हाथ जोड़ने की बात नहीं है, पाँव पड़ने की बात नहीं है, यहाँ तो प्रैक्टिकल में उसने बता दिया कि तुम देवी देवता हो तो हो, स्वीकार करना उसको। सारा खेल है स्वीकार करने के ऊपर, कि हमने सचमुच स्वीकार कर लिया कि मैं वास्तव में वही उस देवकुल की महान आत्मा हूं। जब हम स्वीकार करेंगे तो कर्मेंद्रियां भी उसी अनुसार कर्म करने लगेंगी। जब हम स्वीकार ही नहीं करते हैं तो पुरानी चाल चलती रहेंगे। आने वाली संडे की मुरली में बाबा पूछते हैं, तपस्या वर्ष में इतने समय से तपस्या कर रहे हैं तो क्या अनुभव करते हैं? बच्चे तो अनुभव करते हैं कि योग भी लगा रहे हैं, अनुभव भी अच्छे हो रहे हैं, उड़ती कला का भी अनुभव हो रहा है, लेकिन आ जाता है बीच में, जितनी परसेंटेज में होना चाहिए उतना नहीं होता है, क्योंकि हमने पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। हाँ, बीच बीच में साइड सीन तो आएंगे, ऐसा नहीं कि हम 24 घंटे उस परम अवस्था में रहेंगे, नहीं, बीच बीच में तो साइड सीन आएंगे, क्योंकि हिसाब किताब तो हमारे कर्मों के पहले से हमने बीज बोए हुए ना, वो तो ना किसी न किसी रूप में सामने आएंगे, लेकिन उस परिस्थितियों में हम घबराएंगे नहीं, उनको समाधान करने के संकल्प चलेंगे, उनमें फंसेंगे नहीं, उन परिस्थितियों को हम अपने जीवन का हिस्सा नहीं बनाएंगे, वो तो परिस्थितियां हमको परिपक्व कराने के लिए आ रही हैं, इसलिए उन परिस्थितियों में भी हमको हलचल में नहीं आना है, वो तो एक जैसे मनोरंजन है, खेल की तरह है। सभी अपने जीवन में अनुभव करते होंगे, किया होगा सभी ने, अभी तक जीवन में इतनी भी परिस्थितियां आई हैं तो अगर अभी इस मंजिल में खड़े होकर देखे हम, तो वो परिस्थितियां क्या थी? बाबा कहते हंसी आएगी अपने ऊपर ही, वो तो कुछ भी नहीं थी, एकदम सहज रूप से निकला है।
भले घर में किसी को मार भी बहुत पड़ी होगी, लेकिन जिसे मार पड़ी होगी वो भी सहयोगी बन गया, हो सकता है जिसने मारा वो और ही आगे हमारे से चला गया, ऐसे भी हो जाता है और हम खुद पीछे हो गए। तो ये तो परिस्थितियां जीवन में आती आती हैं, लेकिन परिस्थितियां भी एक खेल की तरह है जो हमको शक्तिशाली बनाते हैं। तो पहली बात है पढ़ाई, दूसरी ट्रस्टी बनना है, ये एक अमानत में ख्यानत नहीं करना है, ये तन मन धन बाबा के त्याज के मूल्य में ईश्वर अर्पण करते हैं। तो हम भी तो ईश्वर के ऊपर बलिहार गए ना, जितना हम भगवान पर बलिहार जाएंगे उतना वो हमारे पर बलिहार जाएगा, कंडीशन यही है। हम पूरा बलिहार जाते हैं वो भी पूरा बलिहार जाते हैं, और इसका हमारे सामने तो ब्रह्मा बाबा हमारे जीवन में एग्जाम्पल ही है, पूरा समर्पण हो गए, कोई सोचा ही नहीं बाद में, कुछ पीछे मुड़ के देखा ही नहीं, ऐसे थोड़ा बाबा श्री कृष्ण बन गए। अच्छा, पता होने के बाद भी पुरुषार्थ में कोई कमी थोड़ी रही बाद में, तो हम भी तो उसी कुल के हैं ना, तो हमारा पुरुषार्थ भी तो वैसा होना चाहिए। तो दूसरी बात, ट्रस्टी बाबा की तरह ट्रस्टी, घर में सब चीजें उपयोग करनी है, धन सुख संपदा के जितने भी साधन है सब उपयोग करना, लेकिन हमारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए उसमें, यूज करो भगवान की दी हुई वस्तु है, बाबा के साधन तुम बच्चों के लिए हैं अच्छी तरह यूज करो, लेकिन उसमें इन्वॉल्व इतना इन्वॉल्व ना हो जाए जो हमारा टाइम उसमें चला जाए, हमारी एनर्जी उसमें चली जाए, इतना इन्वॉल्व ना हो जाए उसमें। तो दूसरी बात है ट्रस्टी। तीसरी बात है भोजन की, बाबा ने आज कही, क्या कहा भोजन के ऊपर, इस ब्रह्मा भोजन के लिए देवताएं भी तरसते हैं, क्यों, क्योंकि वो ब्रह्मा भोजन खाकर ही देवताएं बने हैं, बाबा ने कहा वो ब्रह्मा भोजन खाकर ही देवताएं बने हैं, लेकिन उसकी कंडीशन है, कौन सी कंडीशन बताई, पक्के योगियों का हाथ का भोजन, क्योंकि भोजन का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है, अगर हमारा भोजन मिर्च मसाले वाला है, बहुत खट्टी तली चीजें हैं, तो वास्तव में ये योगियों का भोजन नहीं है। जगदीश भाई कहा करते थे, आते थे तो कोई भाई बहने पूछते थे कि भाई साहब के अगर ऐसा है तो फिर यहाँ इतना भोजन दूसरा क्यों बनाते हैं, तो बोला वहां फीका भी तो पड़ा था, तुमको किसने बोला खाने के लिए, तुम वो वाला खाओ, लेकिन हम बहाना बहुत मार देते हैं ना, मान लो अगर हम बोले कि हमको फीका ही खाना है तो बहाना क्या लगाएंगे, क्योंकि फीका भोजन तो थोड़ा ही था खत्म हो गया, नहीं अगर हम चालू कर देंगे तो धीरे धीरे भोजन फीका ज्यादा बनना शुरू हो जाएगा, लेकिन हमारी आदत ही मीठा तीखा खाने की पड़ी हुई है, पहले से जीव को ऐसे हमने स्वाद लगा के रखा हुआ है, इसलिए फिर ढूंढते हैं उसको। तो भोजन का हमारे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, इसलिए जितना हो सके सात्विक भोजन, जितना हो सके उतना सतो प्रदान, जितना हो सके उतना फल फ्रूट, पहले हम भी फल फ्रूट खाते नहीं थे बिल्कुल भी, लेकिन फर्क पड़ता है, रियली बहुत फर्क पड़ता है, हमारे विचार ही बदल जाते हैं उससे, और जितना हो सके उतना हल्का कम भोजन, नहीं तो भोजन ना हम पचाने में हमारा सारा पेट लगा रहता है, सारी बुद्धि उधरी जाती रहती है, हम नई नई प्लानिंग बनाते, क्योंकि आत्मा को सुख चाहिए, या तो वो ज्ञान योग से सुख का अनुभव करेगी या भोजन से करेगी, सुख तो चाहिए क्योंकि भोजन से सुख तो मिलता है, लेकिन उस भोजन के सुख में फिर बाद में दुख समाया हुआ है, क्योंकि वो भले ब्रह्मा भोजन हम तो बाबा को बड़े प्यार से भोग लगाया, पूरी तरह से तैयारी की और खा लिया ज्यादा, तो ब्रह्मा भोजन भी जहर की तरह काम करेगा, वो ब्रह्मा भोजन ही ब्रह्म भोजन बन जाएगा, हम ब्रह्म में फंस जाएंगे बिल्कुल। तो हर चीज की बाबा ने अंडरस्टैंडिंग नॉलेज दी हुई है, हम देखते थे दादियों का भोजन थोड़ा थोड़ा दो दो रोटी बस, और वास्तव में सच में हमने देखा अगर ज्ञानियों के चिंतन में रहते हैं, सेवाओं में व्यस्त रहते हैं, अच्छी अच्छी प्लानिंग बनाते हैं, तो वास्तव में भूख अपने आप ही कम हो जाती है, खुशी में भूख अपने आप ही कम हो जाती है, इसलिए भोजन पर अटेंशन बड़ा जरूरी है, भोजन हमारा सतो प्रदान, और दूसरा भोजन करते समय श्रीमत तो बाबा ने दी है कि बात नहीं करनी है, तो कौन है ऐसा क्लास में जो बात नहीं करता कभी भी भोजन करते समय, हाँ देखो कितने लोग हैं, तो देखो कितनी खुशी हुई जिन्होंने हाथ उठाया, उन भाई बहनों को कितनी खुशी हुई होगी, और जिन्होंने हाथ नहीं उठाया वो ताली बजाओ उनके लिए सभी अब ताली बजा के तो हम खुश हो गए, लेकिन अंदर में थोड़ा गिल्ट कॉन्शियस तो पैदा हो गई ना और हमने देखा है जब जब भोजन मौन में करते हैं, मौन में भी मन तो भागता है, लेकिन लंबे समय की आदत के बाद जो शक्ति मिलती है उस भोजन से, उसकी जो खुशी मिलती है, उसकी अपना ही एक सुख है वो। इसलिए जब भी हम भोजन करते हैं, भले कुछ भी खा रहे हैं, लेकिन बाबा की याद में उस भोजन को भोजन ना समझे, हमारे जीवन के परिवर्तन का आधार है वो, हमारे विकर्मों को भस्म करने का एक तरीका है वो, हमारे ऊंची अवस्थाओं को प्राप्त करने का एक साधन है वो। तो भोजन को भोजन समझ के नहीं खाना है, ब्रह्मा भोजन है वो। उस कण कण में, उस एक एक निवाले में जैसे परमात्म शक्तियां समाई हुई हैं, शक्तियों की लाइट समाई हुई है। आज का स्लोगन क्या था? सर्व शक्तियों की लाइट खाते रहो तो क्या स्लोगन पूरा था? सर्व शक्तियों की लाइट जलाकर रखो तो माया दूर से भाग जाएगी। तो सारे दिन में सर्व शक्तियों की लाइट खाते रहना है, चिंतन करना उसका कि कौन कौन सी शक्तियां हमारे जीवन में हैं, कौन कौन सी शक्तियां हैं, समाने की, समेटने की, परखने की, सहन करने की, विस्तार को संकीर्ण करने की, आठ आठ शक्तियां होगी, और बाकी तो आज एक लिस्ट बनानी है सभी को, कम से कम 100 शक्तियां तैयार करनी है, और इतनी हैं। हमने बनाई थी एक वाली, 70 तक तो पहुंच गए थे, लेकिन फिर उसके बाद भूल गए उसको, ये भी एक माया है। तो लक्ष्य रखना, बड़ा लक्ष्य, तो धीरे धीरे अगर 100 नहीं होंगे, कम से कम 70-80 तो हो ही जाएंगे। तो जितना समय हम इतना अपने आप को बिजी रखेंगे, तो स्वतः कर्मातीत अवस्था की हमारा कदम बढ़ता जाएगा। ज्ञान योग में अपना समय देना भी तो कर्म है ना, ये कर्म ही हमको कर्मातीत अवस्था की तरफ ले जाता है। तो सर्व शक्तियों की लाइट हमेशा जला कर रखनी है, तो भोजन के साथ वो भी खाते रहना है। तो ये तीसरी बात थी भोजन की बात। चौथी बात है, आई बाबा ने बताया था तुम्हें किसका संग करना है, योगियों का, और जो बाबा ने मुरली में बताया है निर्विघ्न, हाँ निर्विकारियों का संग करना है। कितना पावरफुल पॉइंट है ये, लेकिन हम तो रहते बाहर में, तो वहां कहां से पहले ढूंढेंगे, उनको पूछेंगे हम आप निर्विकारी हो तो संग कैसे मिलेगा फिर। तो जितना हो सके, देखो गृहस्थ में तो रहना ही है, ऐसा तो है नहीं हम उनको छोड़ के आना है। तो हमें जो उनके इस संसार में बाबा ने हम सबको अवतरित किया हुआ है, सारे संसार में बाबा का एक ही कर्तव्य है, पतितों को पावन बनाना। तो हमारे मुख से, हमारे मन से हमेशा ऐसे संकल्पों का प्रवाह होते रहना चाहिए जो हमारे अंग संग में आने वाली आत्माएं हैं जो पवित्रता का अनुभव करें, उनके विकारी ख्यालत अपने आप समाप्त होते जाएं, विकारों की तरफ उनकी बुद्धि ना जाए, उनके विकारों की तरफ जैसे उनको भी घृणा आना शुरू हो जाए धीरे धीरे, क्योंकि विकार छूटना कोई सहज काम नहीं है। जन्म जन्म के संस्कार हमारे अंदर पड़े हैं, चाहे वो भाई हैं, चाहे बहन हैं, चाहे नए हैं पुराने हैं, विकारों के संस्कार बड़े गहरे हैं। हम तो पूर्व ऊपर तक काम कर रहे हैं और विकारों के संस्कार नीचे बैठे हुए 10 फुट नीचे, और हम तो 1 फुट तक ही हमारा हाथ जा रहा है, और जब कोई ट्रिगर ऐसा मिलता है तो विकार सब बाहर आते हैं। जैसे आंखों से कोई सीन देखेंगे सब विकार बाहर निकलेंगे, जैसे कोई भी ऐसा कोई सीन आएगा सब विकार बाहर निकलेंगे। ऐसा नहीं हम दूध से दुलगे हुए हैं। तो लंबे समय से 11 पुरुषार्थ करने की बात है, इसलिए बाबा कहते निर्विकारियों का संग, अर्थात स्वयं को इतना निर्विकारी बना लेना है, स्वयं को इतना पवित्रता से भरपूर कर लेना है कि जैसे अंग अंग हमारा संपूर्ण पवित्र हो जाए। इसलिए स्वयं पर सारा काम करना है। आय का वरदान था, उसमें 2 स्लोगन थे, कौन से? स्वयं को परिवर्तन करना है, दूसरों को परिवर्तन नहीं करना है। लेकिन होता क्या है, हम सोचते हैं कि वो परिवर्तन हो जाए तो ठीक हो जाएगा, वो बदल जाए तो हम बदल जाएंगे। नहीं, सारा काम स्वयं परिवर्तन है। तो स्वयं की कर्मेंद्रियों को इतना शुद्ध, शांत, पवित्र बना देना है कि अंग अंग वो शीतल हो जाए, और लंबे समय के पुरुषार्थ के बाद। और इसका बताया सीधा संबंध भोजन से है। जितना भोजन हल्का, सात्विक, मिर्च मसाले से मुक्त होगा, उतना हमारी प्योरिटी अपने आप बढ़ती जाएगी, और रियली 60-70% प्योरिटी तो हमारी भोजन से बढ़ जाएगी। आप भले 1 सप्ताह करके देख लो, निश्चित तौर पर उसका परिणाम सामने मिलेगा। तो हमें पवित्रता बढ़ानी है, इसलिए जब भी हम मेडिटेशन करते हैं, योग में बैठते हैं, तो अधिक से अधिक हमको इसी सुमान का अभ्यास करना है, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, ये शरीर संपूर्ण पवित्रता से बना हुआ है, ये जैसे पवित्रता की लाइट का शरीर बना हुआ है, अंग अंगों में पवित्रता है, आंखें मेरी संपूर्ण पवित्र आंखें हैं, ये हाथ 5-10 उंगलियों में पवित्रता समाई हुई है, पूरे शरीर में पवित्रता पवित्रता की जैसे वाइब्रेशन दौड़ रहे हैं, रग रग में पवित्रता दौड़ रही है, नस नस में पवित्रता का करंट दौड़ रहा है और वो निरंतर चारों तरफ फैल रहा है। और जो भी मुझे देख रहे हैं, जिसके भी संबंध संपर्क में आ रहा हूं, जिसके भी मैं संघ में आ रहा हूं, उन सब में भी पवित्रता के वाइब्रेशन निरंतर जाते जा रहे हैं, उनके भी ख्याल चेंज होते जा रहे हैं। इसलिए मंदिरों में देवी बोलती थोड़ी नहीं है, इतने सारे भक्त आते हैं, अलग अलग मनोवृत्ति के आते हैं, कोई विकारी भी कोई निर्विकारी भी, अलग अलग भांति के लोग आते हैं, लेकिन देवी को देखते संकल्प कैसे शांत हो जाते हैं। तो वो तो एक पत्थर की मूर्ति है और हम तो चलती फिरती चैतन्य मूर्ति है और उसके ऊपर तो किसी का हाथ भी नहीं है, हमारे ऊपर तो स्वयं भगवान का हाथ है, वो निरंतर हमारे पास साथ में है, निरंतर हम उसके सन्मुख में है, तो हमारी पवित्रता कितनी झलकनी चाहिए। तो पवित्रता का हमको लंबे समय तक अभ्यास करना है, लिखना है उसको, मैं परम पवित्र आत्मा हूं, और उसके आगे उसका चिंतन करना है। केवल सोमान को लिखना नहीं है, उसका आगे चिंतन करना। हाँ, सोमान को लिखने से भी आत्मा शक्तिशाली बनती है, लेकिन उससे भी ज्यादा शक्तिशाली तब बनेगी जब उसका सोमान का हम आगे चिंतन करेंगे, उसको बढ़ाएंगे, ताकि सारे दिन में जो हमारे संकल्प हैं इधर उधर जा रहे हैं, उन संकल्पों को हम व्यवस्थित कर सकें। वो संकल्प हमारे जो एक शक्ति है, संकल्प हमारे जीवन का एक खजाना है, अमूल्य खजाना है, उस अमूल्य खजाना को हम अपने आप में समा सकें। ऐसे नहीं हमारे संकल्प ऐसे बेस्ट ही चलते जाएं, इसको देख रहे उसको देख रहे, अभी देखने का टाइम कहाँ रहा, अभी अपने आप को देखना है। इसलिए बताया स्वयं को परिवर्तन करना है, स्वयं को पवित्रता से इतना भरपूर कर लेना है कि अंग अंग जैसे शीतल हो जाए, तभी तो शीतला देवी का गायन है। तो तीसरी बात कौन सी हुई, निर्विकारियों का संग, अर्थात पहले जो संग सबसे ज्यादा संग किसका है, हम आत्माएं अपनी कर्मेंद्रियों के संग में ज्यादा रहते हैं, दूसरों का संग हमें कितना प्रभावित नहीं करेगा, यह वाला संग जो है, ये आंखें ये हाथ ये संग ज्यादा प्रभावित करता है। और सबसे ज्यादा संग कौन सा है, सबके पास एक छोटा बच्चा रहता है आजकल, मोबाइल छोटे बच्चे की तरह है और मोबाइल से सबको बहुत प्यार होता है, कई बार तो बाबा से ज्यादा प्यार हो जाता है, और मोबाइल को कितना संभाल के रखते हैं, अच्छा सा कवर पहना के रखेंगे, भले बच्चों को कपड़े फटे हो चलेंगे, मोबाइल का कवर अच्छा होना चाहिए, अगर बच्चा गिर गया थोड़ा उसको चोट लगी मलहम पट्टी कर देंगे ठीक हो जाएगा, उसके बारे में ज्यादा चिंता नहीं चलेगा, अगर मोबाइल की स्क्रीन टूट गई तो उसके बारे में सोचते रहेंगे। तो मोबाइल से हमारी कितनी प्रीत हो गई है। तो ये संग जो है ना, ये मोबाइल भी जैसे एक स्पिरिचुअल मोबाइल हो जाए, हम रोज सोचना कि आज बाबा ने इस मोबाइल के ऊपर हाथ फेर दिया है, और इससे वही काम होना चाहिए जो श्रीमत अनुसार हो, क्योंकि ये माया की अंतिम चाल है। इसलिए सर्व शक्तियों की लाइट हमेशा जलती रहे। तो कितनी बात होगी, चौथी बात, निर्विकारियों का संग। नेक्स्ट है दीदी का स्लोगन, आज की मुरली में था, कौन सा दीदी का स्लोगन था, अब घर जाना है, बाबा ने कहा अब तुमको घर लौटना है, तुम इस संसार में मेहमान हो, मेहमान का किसी के साथ कोई लगाव नहीं होता है, मेहमान अर्थात जितना समय आए उतना समय हमारा ध्यान रहेगा वहां, वहां ना कोई वस्तु में ध्यान जाएगा, वहां कोई जो भी चीजें हैं थोड़े समय के लिए रहेगा, उपरामावृत्ति बनी रहेगी कि हमको वापस लौटना है, ये हमारा कोई नहीं है, ये तो टेम्परेरी, हमसे मिलने जुलने हाय हेलो करने आए, गपशप मारने फिर वापस ले जाना है। तो हम भी इस संसार में अब मेहमान हैं, वापस गौर लौटना है, और जहां लौटना होता है वहां हमारी बुद्धि लगी रहती है। जैसे आप मधुबन में आए, तो मधुबन में जब आने की तैयारी की तो बुद्धि कहाँ थी आपकी, मधुबन की तरफ थी, और मधुबन के पूरा हो गया तो कहाँ है वापस, घर जाने की है। उल्टा होता है, जब घर में होते तो मधुबन याद आता है, और जब मधुबन में होते तो घर याद आता है। तो यहां से हम देखते हैं सवेरे सवेरे फोन चालू कर देते हैं, अरे भाई छोड़ दो फोन, चार दिन तो आए बड़े मुश्किल से भगवान की गोद में बैठे हो, यहां आकर भी हम घर को याद करते रहे। हाँ ठीक है, अगर बात करनी है एक बार फाइनल तीन दिन पहले भट्टी से कर लो, फिर स्विच बंद कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये कल सबको जो ऑनलाइन हो रहा है, सब खाते वाते बंद हो जाए, किसी का कुछ हाथ में नहीं आने वाला अभी। अगर अभी बैंक में चले जाओ, ऑनलाइन जहां होता है पैसा निकालना चाहो निकल जाएगा बिना लाइन के, नेट बंद हो जाए निकलेगा नहीं। परसों में एक जगह गए थे तो बेचारा बुजुर्ग है, वो रो रहा है भाई पैसा दे दो, बैंक वाला कैसे कहता मैं कैसे दे दूं, लाइन ही नहीं है तो कैसे दे दूं, वो बेचारा उसके पांव ही पड़ गया मैनेजर के, तो बोला ठीक है चलो मैं अपने खाते से तुमको दे देता हूँ, ऐसे दिया उसने। तो आगे चल के ऐसे आएंगे पैसे भी सब डूब जाएंगे। इसलिए इंटरनेट ये जाल जो है ना बड़ा खतरनाक जाल है। तो कौन सी बात बता रहे थे? अब घर जाना है, मोबाइल को साथ नहीं लेके जाना है, ये सारा इधर ही छूट जाना है। तो हमारा साधनों से कितना लगाव होता जा रहा है। यूज करना हर चीज को, अच्छी तरह यूज करो। हम भी यूज करते हैं, बहुत यूज करते हैं, लेकिन उसमें मुरलियों के पॉइंट, उसमें अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आंसर या उसमें कोई कहावतें होती हैं, तो वो करना उसको यूज। बाकी इतना भी अटैचमेंट उसके बिना हम कुछ कर नहीं सके। छोड़ दिया तो छोड़ दिया, अगर डेढ़ घंटा एक घंटा योग में बैठे तो बिल्कुल भी याद नहीं आनी चाहिए उसकी। और नेक्स्ट है स्वराज्य अधिकारी की अवस्था, क्योंकि जब तक हम अपने आसन पर स्थित नहीं रहते हैं तब तक ये कर्मेंद्रियां हमको धोखा देती रहती हैं। कर्म तो हमको इन कर्मेंद्रियों के माध्यम से करना है, और स्वराज्य अधिकारी की हमको स्मृति रहेगी तो हम कर्ण करावन हार की स्मृति से कर्म करेंगे, और वो कर्म जो है वो कर्म भोगनी बनेंगे, वो कर्म योग्य स्थिति का अनुभव कराएंगे। नहीं तो हमारे कर्म भी कैसे बन जाते हैं? बंधन बन जाते हैं। एक है कर्म के संबंध में आते हैं, दूसरा है कर्म बंधन में बंध जाते हैं, और संबंध में सुख होता है और बंधन में दुख ही दुख है। तो दुख हम तो खुद ही तैयार कर लेते हैं। कोई भी हम कर्म करते हैं उसमें हम इतना इन्वॉल्व नहीं जाए कि हम किसकी याद में बैठे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। हाँ ठीक है पारिवारिक जिम्मेवारी निभानी है, लेकिन परिवार को भी हम भगवान का परिवार समझ के चलें। घर में जो बच्चे हैं तो उनको क्या समझना है? बाबा के बच्चे हैं। पत्नी है तो क्या समझना है? बाबा की पत्नी है। बोला किसी ने? अभी बोला है। बात तो ठीक है वैसे, क्योंकि हम तो सब बाबा की पत्नियां तो हैं। हाँ पत्नियां तो है ही हैं, इसमें शर्माने की क्या बात है। और पति है तो नहीं, उसको बाबा का पति नहीं कह सकते। पतियों का पति तो एक ही है, तो उसको सोचना कि बाबा की पत्नी है ही। तो जो भी है घर में संबंध, वो सब ऐसे रिलेशन बना के रखें जैसे हम सब बाबा की छत्रछाया में पल रहे हैं। यहाँ की सारी अनूठी परंपराएं हैं, संसार से हटकर ये परंपराएं हैं। तो इन परंपराओं को जीवन में लाने के लिए जितना हम लाएंगे उतना जीवन रमणीक बनेगा, और रमणीक बनेगा तो पुरुषार्थ भी सहज होगा। अगर हम एक ही तरीके से चलते रहेंगे ना तो बहुत भारी पुरुषार्थ लगता है, लगता है इतने सालों से कर रहे हैं कुछ तो हो नहीं रहा है, कुछ तो स्वर्ग के सीन दिखाई नहीं दे रहे हैं। अरे स्वर्ग को छोड़ो, आज के दिन को देखो, आज ही स्वर्ग है, अब भी स्वर्ग है, अभी में जीना है, अभी नाउ प्रेजेंट मोमेंट में। पता नहीं इस हॉल से बाहर निकलेंगे नहीं निकलेंगे। अगर अभी हम खुशी खुशी होंगे तो अगला जन्म भी होगा तो खुशी खुशी घर वाले घर में होगा, आगे हम रोते रहेंगे तो आगे भी रोते रहेंगे, सीधी सी बात है। तो जीना प्रेजेंट में, यही हमारे हाथ में, यही हमारा हमको गिफ्ट है, सबसे बड़ी गिफ्ट प्रेजेंट की गिफ्ट है। ये नहीं सोचना कल क्या होगा, जो होगा हो देखी जाएगी, अभी तो जी लो अच्छी तरह से। कल को सोचते हम आज का सुख क्यों खो दें, आज जो हमको शांति मिल रही है उसको हम क्यों खो दें। तो अभी में जीना है, अभी का ही मजा है। तो कर्मातीत अवस्था बनने के लिए कौन सी बात बताई? अभी स्वराज्य अधिकारी की सीट पर सेट रहकर इन सारी कर्मेंद्रियों पर अपना पूरा शासन बना के रखना है, और इनसे दोस्ती करनी है, जबरदस्ती नहीं है, आंखों से बातें करनी है। अरे ओ आंखों तुम कितनी प्यारी हो, तुम्हें भगवान ने स्वयं निहाल कर दिया, तुम्हारे में भगवान ने कितना प्यार भर दिया, पवित्रता भर दी, परमात्म प्रेम भर गया, परमात्म शक्तियां भर गई, परमात्म गुण भर गए, ऐसी बात करनी, क्योंकि इनसे हमको काम लेना है। अब घर में जिनके साथ रहते हैं अगर उनको आप गाली गलौज करो तो सहयोग देंगे? वो बोलेंगे आप तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। तो एक कर्मेंद्रियां हमारी तो निरंतर परिवार का हिस्सा है, तो इनके साथ हमको अच्छी तरह से काम लेना है, योग के छोटे छोटे प्रयोग करने हैं। तो एक बार क्या हुआ, एक बात याद आई, गुजरात का एक भाई था, छोटा बच्चा था, बहुत साल पहले, वो कोई 3-4 साल का होगा, अभी तो बड़ा हो गया, अभी मैं समझता हूँ बीकॉम में पढ़ता होगा वो। तो माँ के साथ आया तो हम ग्रुप में बैठते थे, तो हमारे साथ ग्रुप में आ जाता था वो मुरली सुनने के लिए। तो उसको एक आदत थी, उसकी माँ भी कहती थी, और वो भी तंग था, उसको रोज रात को ना सोते सोते बाथरूम हो जाता था बिस्तर में, और बड़ा तंग हो गया बेचारा वो। तो बहुत इलाज कराए डॉक्टरों के पास, कभी कहाँ कभी कहाँ, कभी वैद्य के पास, कई बबूत खाने कुछ कुछ खाते रहे, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। तो माँ भी तंग होगी बेचारे, घर वाले भी तंग होगे, उसको रोज डांटते भी थे, तो तुम बड़ा भी होता जा रहा है, सातवीं आठवीं भी हो गया अभी। तो फिर अंत में उसने बोला, बाबा अगर आज रात को बाथरूम बंद नहीं हुआ तो तुम अपने रास्ते मैं अपने रास्ते, और अगले दिन से ठीक हो गया। तो भगवान को थोड़ी धमकी भी देनी पड़ती है, भाई इतने सालों से मैं तुमको याद कर रहा हूं, थोड़ी बहुत तो मेरे पर रहम कर दे अभी, कब तक मैं सुनता रहूंगा। तो ऐसे ऐसे किस्से सच मुझे होते हैं कि बाबा भी बंधा हुआ है। बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों की मदद नहीं करूंगा तो किसको करूंगा, वो तो है ही हमारे के लिए। तो बाबा की मदद को अनुभव करना है ना, वो हमारे लिए है। तो नेक्स्ट है सर्व संबंधों के साथ उसको याद नहीं करना, उसको पत्र लिखना, बाबा को सर्व संबंधों से पत्र लिखना, और लिखो, हमने लिखे थे एक बार, और कभी कभी उनको याद करते हैं तो सचमुच वो पत्र लिखते, जैसे जैसे हम शरीर से घूम ही हो गए एकदम। सभी ने अनुभव किया होगा, नहीं सभी ने नहीं किया होगा, कोई कोई ने, जिसने कोई कौन सा प्रेम कहते हैं, जो लव होता आपस में एक दूसरे का, हैं नहीं लैला मजनू का नहीं, लव मैरिज कहते हैं ना, जिसने लव मैरिज, जिसने एक दूसरे को पत्र लिखे थे कभी किसी ने, कोई है किस रमारे, और देखो है ना, हाँ तो पत्र लिख लेते कैसे खो जाते हैं देह की सुध बुध। तो बाबा के साथ लव मैरिज हुई है हमारी, अब उसको पत्र लिखो, है ना। माँ बेटे का पत्र पढ़ती है तो कैसे गुम हो जाती है, अपने शरीर से गुम हो जाएगी, लेकिन वो पत्र में उसको कौन दिखेगा, बेटा दिखता है, इतना परिवार से अटैचमेंट होती है। तो बाबा से सर्व संबंधों का अनुभव करने के लिए उसको पत्र लिखो आप, और दृढ़ता से आज लिखो, प्रतिज्ञा करो कि आज से हम ये करेंगे करेंगे। और सबसे आसान काम है ये, आसान योग लगाने का तरीका ही, योग लगाना केवल, बाबा ने उस दिन कहा ना तपस्या केवल याद करना नहीं है, पिछले संडे की मुरली में तपस्या केवल याद करना तपस्या नहीं है, हर कर्म करते हुए तपस्या है, अनष्ट हर कर्म में अनष्ट रहना भी तपस्या है, पिछले संडे की मुरली थी। तो बाबा को पत्र लिखना, क्या लिखेंगे पत्र लिखेंगे, मेरे परम प्रिय साजन, मैं आपकी सजनी गुजरात के फलाने शहर से बोल रही हूं, नहीं लिख रही हूं, क्या लिख रही, आगे बताओ क्या लिखेंगे, मैं आपको बहुत याद करती हूं, हैं मेरा आपसे प्रेम हो गया है, अब मैं जाऊं तो कहां जाऊं, और यहां पे था। उसको लिखो, मैं आपको बहुत याद करती हूं, लेकिन मेरा कहीं कहीं ध्यान दूसरी तरफ भी चला जाता है, फिर मैं व्हाट्सएप भी चलाती हूं, व्हाट्सएप चलाते चलाते किसी को मैसेज भी कर देती हूं, अपनी सारी कमियां भी लिखो उसमें, सच्चाई सफाई से। इसलिए कहते हैं सच्चे दिल पर सावराजी, सच तो बिठो नच, और सत्य की कौन सी कहावतें हैं, और सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं हो सकता है, और सच की नाव हिलेगी डूलेगी डूबेगी नहीं, और सच्चे दिल पर सावराजी, और सिद्ध करने की जरूरत नहीं, और एक शक्तिशाली और है वो, और अंतिम है वो कौन सा है, वो है राम नाम सत है। तो ये भी तो है ना, इसको हम भूल जाते हैं, और यही तो वास्तव में सत है, जाना सबको है, लेकिन दूसरे सत्य याद आ रहे हैं, और जो असली वाला वो तो याद ही नहीं कर रहे हम। तो बाबा को हर संबंध से पत्र लिखना, उसको दिल से उसको पत्र लिखो, है ना, सारी कमी कमजोरियां में उस लिख डालो, और देखना वो लिखते 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 से छूट जाएंगे, अंदर से महसूस होगा, रियलाइजेशन होगी, वो पश्चात आपके आंसू अपने आप अंदर में आएंगे, उन आंसू में सारे विकर्म भस्म हो जाएंगे, उन आंसू में हम हल्के हो जाएंगे, उड़ने लगेंगे। तो पत्र लिखना बाबा को। और नेक्स्ट है अशरीरी अवस्था का अभ्यास करना है, जब भी मौका मिले एक सेकंड दो सेकंड, एक सेकंड में चले जाओ, अभी बैठे बैठे चले जाओ सभी, एक सेकंड में सोच लीजिए कि हमने शरीर छोड़ दिया और मैं आत्मा निकलकर सीधी परम धाम में पहुंची, बाबा के साथ टच किया, फुल चार्ज हो रही हूं, जैसे बाबा की सारी शक्तियां मेरे में ट्रांसफर हो रही हैं, मैं आत्मा जैसे सर्व शक्तियों से फुल चार्ज हो गई हूं, चारों तरफ सन्नाटा सन्नाटा, परम धाम की सारी शांति सारी प्योरिटी मुझ आत्मा में समा गई है, परमात्म शक्तियां परमात्म प्योरिटी वो सारी लाइट के रूप में मुझ आत्मा में भर गई है, मैं आत्मा वापस
अपनी इस देह में आई और वो सारी शक्तियाँ, एनर्जी, पावर्स, करंट पूरी बॉडी में चला गया। सारी कर्मेंद्रियाँ शीतल होगी, पवित्र होगी, अंग अंग शीतल हो गया, सिर की चोटी से लेकर पाँव के नाखून तक संपूर्ण प्योरिटी, लाइट ही लाइट। सारी कर्मेंद्रियाँ शुद्ध होगी। फिर मैं आत्मा इस देह रूपी वस्त्र को छोड़कर सीधा शांति धाम, फिर वापस अपनी देह में। अब मैं आत्मा अपनी इस देह को छोड़कर सूक्ष्म काया से फरिश्ता बनकर सूक्ष्म वतन में पहुंची। बाप दादा के सामने बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर और बाबा की आंखों से शक्तिशाली लाइट की किरणें निकल रही हैं, सीधा मेरी आंखों में समा रही है और मैं संपूर्ण फरिश्तेपन का अनुभव कर रहा हूँ। बाबा ने मेरे दोनों हाथ पकड़े अपने हाथों में, सारी शक्तियाँ मुझे विल कर दी, ट्रांसफ़र कर दी, फुल चार्ज कर दिया और मैं फरिश्ता बाबा से दृष्टि लेते हुए, विदाई लेते हुए फिर वापस अपनी देह में। मैं आत्मा फिर निकली अपने इस देह से, सीधा अपने लौकिक घर में पहुंच जाइए। लौकिक घर में, सारे घर में सारे मधुबन के वाइब्रेशन, शांतिदायक के वाइब्रेशन, सूक्ष्म वतन के वाइब्रेशन सारे घर में भर दिए। पूरा घर जैसे लाइट का हो गया। घर के सारी दीवारों में, कण कण में प्योरिटी समा गई, सर्वशक्तियों की लाइट समा गई। जैसे बाप दादा इस घर की परिक्रमा कर रहे हैं, मैंने बाप दादा की उंगली पकड़ी है, फरिश्ता बनकर इस घर की परिक्रमा कर रहे हैं। ये घर जैसे संपूर्ण निर्विघ्न बन गया है, निर्विकारी बन गया है, एकदम जैसे शीश महल बन गया है जहाँ सभी देवी देवताओं का निवास हो रहा है। ये के महान तीर्थ बन गया ये घर। अभी फिर उस घर से वापस अपने देह में वापस आ जाइए। अब देह से निकल कर सीधा शांति स्तंभ, शांति स्तंभ का चक्कर लगाइए। शांति स्तंभ के चारों तरफ देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। 18 बातें, वो सारी याद कीजिए। शांति स्तंभ से मैं फरिश्ता धीरे धीरे चल रहा हूँ, हिस्ट्री हॉल में पहुँचा। यज्ञ हिस्ट्री क्या बोल रही है, वो तस्वीरें क्या बोल रही हैं, वो त्याग, तपस्या, वो सेवा के वाइब्रेशन, वो प्योरिटी के वाइब्रेशन सारे मेरे में समा रहे हैं। वहाँ से मैं फरिश्ता निकला, बाबा के कमरे में पहुँचा। बाबा जैसे गद्दी पर बैठे हुए हैं और बाबा से मैं दृष्टि ले रहा हूँ। बाबा के कमरे से निकलकर झोपड़ी में पहुँचिए। झोपड़ी में जैसे वो सखा रूप में बाबा बैठा है, अपने दिल की बातें मैं सुना रहा हूँ, हालचाल सुना रहा हूँ, लेन देन कर रहा हूँ बाबा से। फिर वापस झोपड़ी से निकले, ओम शांति भवन, सवेरे जिस कुर्सी पर आप बैठे थे वहाँ पहुँच जाइए। सामने समदली पर बाबा बैठे हुए हैं, ओम शांति भवन, और मुझे वहाँ से बुलाया सीट से और मैं सीधा बाबा के सामने पहुँच गया और बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं। मेरे सिर पर हाथ रखकर बहुत प्यार कर रहे हैं, मुझे पुरुषार्थ के अच्छे अच्छे टिप्स दे रहे हैं। बाबा से दृष्टि लेते हुए फिर वापस अपनी इस देह में। ओम शांति। टाइम तो हो गया, तो ऐसे अलग अलग तरीके से हम अभ्यास कर सकते हैं। ओम शांति।
क्या ऐसा वैसा ना हो कोई समस्या। व्यर्थ बातों से मुक्त हो करनी है ऐसी तपस्या। क्यों क्या ऐसा वैसा ना हो कोई समस्या। व्यर्थ बातों से मुक्त हो करनी है ऐसी तपस्या। देह से न्यारे आप समान, देह से न्यारे आप समान, विदेही बनना है ओ बाबा तुम सा बनना है। एक यही तमन्ना है, एक यही तमन्ना है।